दिन भर तारीख 31 जनवरी दिन गुरुवार, मैं हूँ मानसी दास। जींद उपचुनाव हारी कांग्रेस, क्या रही वजह?
जो मेन तीन पार्टियां हैं, इन तीनों के कैंडिडेट जाट हैं। बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो नॉन जाट है, तो ये सारा मुद्दा जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया।
राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ बजट सत्र, नहीं पेश हुआ आर्थिक सर्वेक्षण।
फाइनेंशियल एलोकेशन सिर्फ 3-4 महीने के होंगे, इस वजह से इकोनॉमिक सर्वे भी जो प्रोजेक्शन करता है वो नहीं कर सकता, प्रोटोकॉल नहीं है।
छत्तीसगढ़ नान घोटाले में दर्ज हुआ मामला।
ईडी आज 2019 5 साल बाद जागा है, इसके पीछे कारण क्या है?
होंगी आपकी चिट्ठियां भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, भूमिका राय से। हरियाणा की जींद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला को शिकस्त दी। वहीं राजस्थान के रामगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शाफिया जुबैर खान ने जीत दर्ज की है। राजस्थान विधानसभा में अब कांग्रेस की 100 सीटें हो गई हैं। इटली की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में प्रवेश कर चुकी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश की जीडीपी पिछले साल के अंतिम 3 महीनों में 2% नीचे गिर गई। इसकी प्रमुख वजह घरेलू मांग में कमी बताई गई है। इससे पहले बीते साल के तिमाही में भी इटली की अर्थव्यवस्था 1% गिरी थी। उस समय इटली की गठबंधन सरकार ने सोचा था कि वे साल के अंतिम महीने में अर्थव्यवस्था को संभाल लेंगे, लेकिन यूरोपीय संघ में बजट से जुड़ी असहमतियों के चलते इटली की अर्थव्यवस्था और अधिक नीचे चली गई। रोम में रहने वाले स्थानीय लोगों ने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। रीटा अल्बर्टी नाम की एक महिला ने कहा,
quello che dice Conte è frutto spesso sicuramente di riflessione e di prudenza.
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जो कहा है वो महज गिरती अर्थव्यवस्था को सांत्वना देने वाले शब्द हैं। हालांकि हमें अपने वित्त मंत्री पर भरोसा है, प्रोफेसर टायरा बहुत ही ईमानदार और काबिल शख्स हैं, हमें उनकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। ये थे रोम में रहने वाली एक स्थानीय महिला के शब्द। वेनेजुएला में कैद किए गए पत्रकारों की रिहाई के लिए अब यूरोपीय संघ भी आगे आ गया है। स्पेन की समाचार एजेंसी ईफी के 3 पत्रकारों को वेनेजुएला में गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेन ने उन्हें रिहा करने की मांग की है। इन 3 पत्रकारों में 2 कोलंबिया से हैं जबकि 1 स्पेन के नागरिक हैं। वे वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन को कवर कर रहे थे। इसी सिलसिले में बुधवार को 2 अन्य फ्रांसीसी पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया। एक प्रेस वार्ता में यूरोपीय यूनियन में विदेश नीति की प्रमुख फेडरिका मोघेरिनी ने इन पत्रकारों की रिहाई के बाद कही। उन्होंने कहा,
From the European Union side, there is clearly the request of releasing any journalists that are detained.
यूरोपीय यूनियन की तरफ से हम स्पष्ट तौर पर ये अपील करते हैं कि सभी गिरफ्तार पत्रकारों को रिहा कर दिया जाए। हमारा मानना है कि पत्रकारों को आज़ादी के साथ उनका काम करने देना चाहिए। यूरोपीय यूनियन हमेशा से ही पत्रकारों की आज़ादी के पक्ष में रहा है। ये थे यूरोपीय यूनियन में विदेश नीति की प्रमुख फेडरिका मोघेरिनी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सूडान की राजधानी खार्तूम में राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी हैं। इससे पहले अल बशीर ने अपने विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि वे सोशल मीडिया के जरिए उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। देश के पूर्वी शहर कसाला में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को व्हाट्सएप या फेसबुक संदेशों के आधार पर नहीं बदला जा सकता। सूडान सरकार के मुताबिक पिछले महीने से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में अभी तक कुल 30 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय यूनियन के 3 प्रमुख देश जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ईरान के लिए होने वाले व्यापारिक भुगतान और अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए एक साझा पेमेंट चैनल बनाने जा रहे हैं। इस पेमेंट चैनल का मुख्य काम पेरिस में होगा जबकि इसका नियमन जर्मनी के विशेषज्ञ संभालेंगे। बर्लिन स्थित अमरीकी दूतावास ने इस संबंध में कहा है कि इन उपायों से ईरान पर अमरीका के प्रतिबंधों पर असर नहीं पड़ेगा। बीबीसी ने अपनी एक जांच में पाया है कि यमन में अमरीका की अलकायदा के ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान कई अज्ञात आम नागरिकों की मौत भी हुई है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। हरियाणा की जींद विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को हार का सामना करना पड़ा है। वो तीसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि जीत भाजपा के कृष्ण मिड्ढा को मिली, जिनके बाद दूसरे नंबर पर रहे जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला। हरियाणा में 2014 से बीजेपी सत्ता में है और इस उपचुनाव को जनता का मूड भांपने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा था। तो क्या है जनता का मूड और सुरजेवाला की हार के पीछे क्या हो सकते हैं कारण, सुनिए बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
इसे चौधरी देवीलाल के परिवार में फूट के दुष्परिणाम के तौर पर देखा जाएगा या जाट वोटों में बंटवारे के नतीजे के रूप में, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल की यह सीट इस उपचुनाव में बीजेपी के खाते में चली गई है। जींद में उपचुनाव विधायक हरिचंद मिड्ढा की मौत की वजह से करवाना पड़ा था। उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के करीबी समझे जाने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला और देवीलाल के पड़पोते जननायक जनता पार्टी से दिग्विजय चौटाला के मैदान में उतरने से बहुत कुछ दांव पर लग गया था। सेंट्रल हरियाणा की सीट पर चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में मुद्दा विकास का रहा, क्योंकि हरियाणा के सबसे पुराने जिलों में से एक होने के बावजूद जींद मूलभूत सुविधाओं के मामले में पिछड़ा रहा है। लेकिन जैसे जैसे मतदान का दिन पास आता गया, मामला फिर जातियों के इर्द गिर्द घूमने लगा और अंत तक जाट बनाम अन्न बन गया। स्थानीय पत्रकार सत सिंह कहते हैं,
जींद में 170,000 के करीब वोट है, तो इसमें से 52,000 के करीब जाट मतदाता है। तो यहाँ पे जो मेन तीन पार्टियां हैं, इन तीनों के कैंडिडेट जाट हैं और बीजेपी ऐसी पार्टी है जिनका जो कैंडिडेट है वो नॉन जाट है। तो ये सारा मुद्दा जो है जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया, यानी कि 52,000 जो जाट मतदाता है उन्होंने अपने में से चूज करना है। जिस तरह से मुद्दा यहाँ चल रहा है, तीन दलों में बट गए सारी वोट।
इस चुनाव में मौजूद तीन मुख्य दलों के उम्मीदवार जाट थे, कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला, जेजेपी के दिग्विजय सिंह चौटाला और INLD से उम्मेद सिंह रेडू। बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण मिड्ढा पंजाबी खत्री समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उसी समुदाय से जिससे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का संबंध है। 1966 में हरियाणा के बनने के बाद प्रदेश के अधिकांश मुख्यमंत्री जाट समुदाय से रहे हैं। प्रदेश में बनी पहली बीजेपी सरकार में गैर जाट के मुख्यमंत्री बनने से जहां जाटों में नाराजगी है, वहीं दूसरे समुदायों में इसका एक मैसेज दूसरे तरीके से गया है। बीजेपी के लिए कृष्ण मिड्ढा, जो पूर्व विधायक हरिचंद मिड्ढा के बेटे हैं, को टिकट देना भी फायदे का सौदा साबित हुआ। सेना से रिटायर्ड डॉक्टर हरिचंद मिड्ढा लंबे समय तक अपने अस्पताल के माध्यम से स्थानीय लोगों की सेवा करते रहे थे। कृष्ण मिड्ढा पिता की मौत के कुछ माह बाद ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। चौटाला खानदान तब पारिवारिक झगड़ों में उलझा था, जिसका अंजाम एक नए दल जननायक जनता पार्टी के रूप में सामने आया है, जिसे ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अजय चौटाला ने गठित की है। हालांकि कांग्रेस ने अपने मुख्य मीडिया प्रभारी और अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी समझे जाने वाले रणदीप सिंह सुरजेवाला को जींद से उतारा था, लेकिन उनकी हार एक बड़ी हार के तौर पर देखी जा सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स के ब्यूरो चीफ हितेंद्र राव कहते हैं,
डेफिनेटली जो कांग्रेस ने कैंडिडेट पुटअप किया था जींद बाय इलेक्शन के लिए, ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी कैंडिडेट। रणदीप सुरजेवाला को जो है एक हैवीवेट की तरह देखा जा रहा था यहाँ पे, और मेरा मानना ये है कि इनके लिए एक सेटबैक है ये।
कांग्रेस चुनाव से जुड़े एक कार्यकर्ता के मुताबिक पार्टी नाम के तौर पर ही यूनाइटेड रह पाई। 10 सालों तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव प्रचार में पूरा समय नहीं दे पाए। इसी बीच उनके घर पर CBI का छापा भी पड़ गया और वो उधर उलझ गए। फैसल मोहम्मद अली, BBC दिल्ली।
चुनाव में हार के बाद रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में जींद बंटवारे व जातपात की राजनीति से उभर कर विकास के नए मार्ग पर चलेगा। श्रोताओं को ये भी बता दें कि आज राजस्थान के रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव का नतीजा भी आया है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी साफिया खान ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के सुखवंत सिंह को उन्होंने करीब 12,200 मतों से हराया है। इस जीत के साथ ही राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 100 सीट हो गए हैं और अब राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पूर्ण बहुमत से केवल एक सीट पीछे है। जीत के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया कि रामगढ़ की जनता ने सोच समझ करके सही फैसला किया है। उनका कहना है कि ये फैसला ऐसे वक्त आया है जब एक मैसेज देने की आवश्यकता थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र शुरू हो गया और सत्र के पहले दिन हर साल आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है, जिसके बाद ही आम बजट पेश होता है, लेकिन इस बार ये सर्वेक्षण पेश नहीं होगा। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की आर्थिक मामलों की जानकार सुषमा रामचंद्रन से और उनसे पूछा कि क्या इसके पीछे कोई खास कारण है।
ये जो इकोनॉमिक सर्वे है हर साल पेश होता है, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे जो है आपके पूरे अगले फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करता है और पिछले भी फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात करता है, लेकिन अभी जो है ये इंटरिम बजट आने जा रहा है, कल पूरा फुल बजट नहीं आएगा। इंटरिम बजट इसलिए आ रहा है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं तीन चार महीने के बाद और ये जो सरकार है इसका जो टर्म है वो खत्म होने जा रहा है। ये बजट जो है सिर्फ 3-4 महीने के बारे में बात करेगा, हालांकि जो पूरा फाइनेंशियल ईयर है इसके बारे में बात करेंगे, बताएंगे कि ब्रॉडली हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि फाइनेंशियल ईयर में ये होगा, लेकिन फाइनेंशियल एलोकेशन सिर्फ 3-4 महीने के होंगे। इस वजह से इकोनॉमिक सर्वे भी जो प्रोजेक्शंस करता है पूरे अगले साल के लिए वो नहीं कर सकता, प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसलिए नॉर्मली इलेक्शन ईयर में इंटरिम बजट या वोटर ऑन अकाउंट के साथ इकोनॉमिक सर्वे नहीं पेश किया जाता।
बजट सत्र से ठीक पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और जैसा कि ये एक नियम होता है कि राष्ट्रपति सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो बताएंगे, तो आज कुछ ऐसा ही हुआ। मौजूदा सरकार के बीते 4.5 साल का लेखा जोखा बताते नजर आए राष्ट्रपति।
वर्ष 2014 के आम चुनाव से पहले देश एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। मेरी सरकार ने कार्यभार संभालने के साथ ही एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया
और उन्होंने अपने अभिभाषण के दौरान 2016 में जो नोटबंदी अचानक लागू कर दी गई थी, जिसे काफी जानकारों ने इसकी आलोचना भी की थी, उसके बारे में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि ये मौजूदा सरकार की एक बड़ी सफलता है।
विदेश में गैर कानूनी तरीके से जुटाई गई संपत्ति के खिलाफ भी मेरी सरकार ने अभियान चलाया। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में नोटबंदी का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम था। इस फैसले ने काले धन की समानांतर अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया और वह धन जो व्यवस्था से बाहर था उसे देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया।
सुषमा जी, क्या लगता है आपको राष्ट्रपति का अपने संदेश में सरकार की उपलब्धियां गिनवाना आखिर संदेश क्या देता है?
देखिए, कोई भी राष्ट्रपति होता है वो मानते हैं कि जो सरकार है वो उनकी सरकार है, वो सरकार के हेड है, वो कमांडर इन चीफ है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के और सरकार उसको रिपोर्ट की जाती है। तो जब भी राष्ट्रपति ये संदेशा देता है बजट सेशन में तो वो कहता है मेरी सरकार, वो उसकी सरकार है, तो वो जो वो अचीवमेंट्स है वो उनके बारे में बोलता है। और ये हर साल हर बार हुआ है, कोई भी पार्टी हो पावर में, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी थर्ड फ्रंट हो, तो वो राष्ट्रपति को बताते हैं कि ये हमारी अचीवमेंट्स है और हम चाहते हैं कि आप इसके बारे में वहां जाके बोले। राष्ट्रपति इंडिपेंडेंट नहीं है हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति का लिमिटेड रोल है, डेकोरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और इस वक्त उसका रोल ये है कि जो सरकार ने किया उसकी जो अचीवमेंट्स है वो बताएगी पार्लियामेंट। तो ये इसमें कोई गलत नहीं है, ये ठीक अपने जो रोल है वो राष्ट्रपति निभा रहा है।
जानकारी दे रही थी आर्थिक मामलों की जानकार सुषमा रामचंद्रन।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ रुपए के कथित नागरिक आपूर्ति निगम यानी नान घोटाले में अब राजनीति तेज हो गई है। 2015 में सामने आए इस घोटाले की जांच चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी ने राज्य की कमान संभालने के बाद इस मामले में SIT गठित कर नए सिरे से जांच शुरू कर दी है। लंबे समय से इस घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम कांग्रेस शामिल करती रही है। अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने अपनी तरफ से इस घोटाले के मामले में एक मामला दर्ज कर लिया है। क्या है नान घोटाला और छत्तीसगढ़ की पुरानी सरकार के लिए ये गले की फांस कैसे बन रहा है, बता रहे हैं रायपुर से हमारे सहयोगी आलोक प्रकाश पुतुल।
धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध शाखा ने 2015 में राज्य में नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर एक साथ छापा मारकर करोड़ों रुपए बरामद किए थे। इसके बाद यह बात सामने आई कि छत्तीसगढ़ में राइस मिलरों से लाखों क्विंटल घटिया चावल खरीदा गया और इसके बदले कई हजार करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की गई। इसी तरह नागरिक आपूर्ति निगम के ट्रांसपोर्टेशन में भी भारी घोटाला किया गया। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस पार्टी कथित रूप से 36,000 करोड़ के इस घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और उनके परिजनों के शामिल होने का आरोप लगाती रही है। यही कारण है कि सत्ता में आते ही कांग्रेस पार्टी ने मामले की SIT जांच शुरू कर दी। लेकिन इस घोटाले के सामने आने के 5 साल बाद केंद्र के प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने अब जाकर अपनी तरफ से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आशंका है कि भाजपा नेताओं को बचाने के लिए ईडी ने मामले की जांच शुरू की है।
2014 का मामला है, ईडी आज 2019 5 साल बाद जागा है। इसके पीछे कारण क्या है? जिस प्रकार से CBI का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है और यहाँ यदि किसी को बचाने के लिए ईडी ने केस फाइल किया है तो बेहद दुर्भाग्यजनक है।
हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इस घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता रमन सिंह और उनके परिजनों के नाम सामने आए हैं और SIT जांच में यह बात प्रमाणित भी होगी, लेकिन रमन सिंह इस जांच को बदले की कार्रवाई बता रहे हैं।
एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 SIT बना दे, डॉक्टर रमन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जितनी एनर्जी, जितनी ताकत इस प्रकार की बदले की कार्रवाई कर रहे हैं उससे ज्यादा विकास करें, डेवलपमेंट के काम करें तो ज्यादा बेहतर होगा।
एक ही मामले की एंटी करप्शन ब्यूरो की जाँच के बाद अब राज्य सरकार की SIT जाँच और फिर इसके बाद केंद्र सरकार के प्रवर्तन निदेशालय की जाँच के निष्कर्ष क्या एक जैसे होंगे या इनमें अंतर होगा, इस पर तो अभी केवल अनुमान भर लगाए जा सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि एक के बाद एक शुरू हुई जांच से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का उबर पाना अभी तो मुश्किल नजर आ रहा है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और अब एक खास रिपोर्ट हरियाणा से। हरियाणा में खाप पंचायतों के अजीबोगरीब फरमान और ऑनर किलिंग की कई घटनाएं लगातार सुर्खियां बनती रही हैं। राज्य की खट्टर सरकार ने दावा किया है कि वो इन तमाम घटनाओं पर काबू पाने के लिए कोशिश कर रही है और उसी के तहत वो अंतरजातीय शादियों को प्रोत्साहन भी दे रही है। लेकिन क्या ये कोशिशें वाकई कामयाब हो रही हैं? सुनिए BBC संवाददाता बुशरा शेख की रिपोर्ट।
हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने साल 2017 में अंतरजातीय शादी करने वाले दंपतियों को दी जाने वाली आर्थिक सहयोग राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी थी। साथ ही सरकार ये दावा करती है कि उन्होंने इन दंपतियों को एक सुरक्षित छत भी मुहैया कराई है। हरियाणा के सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी कहते हैं,
जहां तक सेफ्टी की सुरक्षा की बात है, हमने सेफ हाउस बनाए, उनको इतना सशक्त बनाने का काम किया कि वहाँ पर उनकी सुरक्षा में कोई सेंध न लग सके।
आंकड़ों के मुताबिक 15 महीने में कुल 608 अंतरजातीय शादियां हुई, लेकिन केवल अप्रैल से सितंबर के बीच 585 अंतरजातीय शादियां हुई, जिनमें से एक साथी अनुसूचित जाति से संबंध रखता था। एक ऐसा राज्य जहाँ प्यार से ऊपर मान सम्मान को रखा जाता है, वहाँ इन युवाओं ने समाज और जाति के बंधन को तोड़कर अपने दिलों की तो सुनी, लेकिन इनका जीवन डर और मुफलिसी में ही बीत रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य के 23 जिले में से 22 में सेफ होम बनाए गए हैं। ये उन दंपतियों के लिए बनाए गए हैं जो भागकर अंतरजातीय विवाह करते हैं। इन सेफ होम का मकसद ऐसे दंपतियों को अस्थायी पनाह देना है।
कदम तो उठाया लेकिन वहाँ पर कुछ दिखते भी नहीं, जैसे कि एक ही रूम था जो भी था, उसी में सबको एडजस्ट होना, जैसे जो भी कपल है, और खाने का पैसा हम ही लोग देते थे, खाने की नहीं तो पानी की सुविधा होने से पानी की भी सुविधा नहीं थी।
राज्य सरकार ये दावा करती है कि वो इन दंपतियों को सभी सुविधाओं के साथ साथ आर्थिक मदद भी दे रही है। कृष्ण कुमार बेदी, सामाजिक न्याय मंत्री, हरियाणा सरकार।
हमने तय कर दिया है कि 1 साल के अंदर अंदर 50% पैसे उन बच्चों को हम देते हैं और 1 साल के बाद बकाया पैसों की हम FD करके उन बच्चों को देने का काम करते हैं।
हालांकि सरकार के इन दावों को ये प्यार करने वाले जोड़े धता बताते हैं।
अभी तक हमें कोई पैसा नहीं मिला है। कुछ दिन पहले ही हम गए थे गांव, वहां से भी पता किया था, लेकिन वहां भी अभी मना कर रहे हैं कि अभी नहीं मिलेंगे।
अभी तक तो सरकार से कोई मदद नहीं मिली।
जहां एक ओर मौत का डर इन प्यार करने वालों को रोक नहीं पाया है, वहीं दो दिलों को मिलाने की खट्टर सरकार की कोशिशें जमीनी हकीकत में दूर नजर आती है।
रिपोर्ट सुना रही थी BBC संवाददाता बुशरा शेख। और अब वक्त है आपकी राय जानने का, यानी आपकी चिट्ठियों का।
आपकी किराए, आप किराए में मेरा नमस्कार। मैं हूँ आपके साथ हिंदू पांडे और आज मेरे साथ हैं।
नमस्कार राजेश, प्रियदर्शी की ओर से।
तो पहली चिट्ठी लेते हैं अशोक कुमार ठाकुर की, ग्राम मालीटोल, पोस्ट अदलपुर, जिला दरभंगा से। लिखते हैं कि मेक्सिको के ऊपर जो दुनिया जहान कार्यक्रम हुआ था बहुत अच्छा लगा और उसके लिए वो देना चाहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत शुक्रिया आपका दरभंगा बिहार से हमें पत्र लिखने के लिए, और आपकी जो तारीफ है वो दुनिया जहान कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले तक जरूर पहुंचा दी जाएगी।
और ये हमारे पास पोस्ट कार्ड आया है हरी बिलास सिंह का, तरसमा मुरैना मध्य प्रदेश से। लिखते हैं श्री वात्सल्य राय द्वारा दिन भर सुना बहुत अच्छा लगा, और दूसरी पटना से मनीष शांडले की रिपोर्ट भी इनको काफी अच्छी लगी, और आपकी राय में केवल आपने पिछली बार 2 पत्र शामिल किए थे और बहुत सारे ईमेल थे तो वो इतने ज्यादा अधिक थे। ये कहते हैं कि इंडिया बोल का विषय कृपया 2 बार दोहराया जाए।
जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने देखिए डाक से पत्र भेजा है मध्य प्रदेश से मुरैना से, और इसको हमने कार्यक्रम में लिया है। इसके पहले वाली चिट्ठी भी हमारे पास डाक से आई थी, और अगली चिट्ठी जो इंदु जी पढ़ने जा रही है वो भी एक पोस्ट कार्ड ही है।
ये है असद अली, जिला रामपुर उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं कि भाई कोई अपने हाथ से जब चिट्ठी लिखता है तो उसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि वो ईमेल से ज्यादा महत्व रखती है। बाकी सबकी तारीफ करते हुए उन्होंने यही बात लिखी है।
बात आपकी सही भी है, और ईमेल में भी जो लोग टाइप करते हैं लंबी चिट्ठियां, जाहिर है कि उनका भी उसी तरह का लगाव होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि चिट्ठी लिखना, उसको जाके पोस्ट करना, और उसके बाद उसको पहुंचने में थोड़ा समय लगता है, और उसके बाद अपनी चिट्ठी के पढ़े जाने का इंतजार करना, इस प्रक्रिया से ईमेल लिखने वाले कम गुजरते हैं। क्योंकि आप जब चिट्ठी भेजते हैं और जब हम तक पहुंचती है वो चिट्ठी, जब तक उसमें काफी वक्त गुजरता है तब तक आपको उम्मीद रहती है कि आपकी चिट्ठी शायद शामिल की जाएगी।
ममता कालिया जी से प्रदीप कुमार जी की बातचीत बहुत अच्छी लगी, और इसके बाद इन्होंने लिखा है कि कृपया मेरा जो पता है पूरा पढ़ें। ये है प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, ग्राम है कैथनपुरवा, सातनपुरवा, अमेठी, उत्तर प्रदेश। मोबाइल नंबर बोलने की जरूरत नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन आपकी चिट्ठी हमें मिली और पता हमने पूरा पढ़ा। हमारे कार्यक्रम सुनते रहें और इसी तरह हमें पत्र लिखते रहें।
गौतम दत्ता किशनगंज बिहार से कहते हैं कि दिलनवाज पाशा से एक डरावनी खबर सुनने को मिली, अमेरिका के उत्तरी भाग में जो बर्फीली चक्रवाती तूफान है उसकी वजह से। आगे लिखते हैं कि संदीप सोनी की दुनिया जहान बहुत अच्छा लगा, और दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स गांधी आश्रम की रिपोर्टिंग भी बहुत अच्छी लगी, जुबैर आलम ने जो पेश की थी।
जुबैर अहमद की रिपोर्ट थी दक्षिण अफ्रीका से। पत्र लिखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, और आपने जिन लोगों की तारीफ की है हम उन तक ये बात जरूर पहुंचा देंगे।
और ये हमारे पास बड़ी प्यारी सी चिट्ठी भेजी है अरुण कुमार ने, पानीपत हरियाणा से। कहते हैं कि सुमैला जाफरी का बीबीसी शी प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगा। बात करें अगर विवेचना की तो वो बहुत अच्छा है रेहान फजल का। दुनिया जहान में आदर्श राठौर, संदीप सोनी, वात्सल्य राय की तिकड़ी अपना कमाल करती है। और इनका एक सुझाव है अरुण कुमार का कि इंडिया बोल में अगर विशेषज्ञ एक से ज्यादा रखे जाएं तो और भी ज्यादा ज्ञानवर्धक रहेगा, और दुनिया जहां में कई बार जानकारी अधूरी सी लगती है।
विशेषज्ञ एक से ज्यादा रखने का जो आपका सुझाव है उसका एक खतरा जो मैं समझ सकता हूँ वो होगा, वो ये है कि अगर विशेषज्ञ आएंगे तो वो उनको बोलने का समय देना होगा। उनको बोलने का समय देने का मतलब ये होगा कि श्रोताओं को जो समय मिलता है उसमें हमें कटौती करनी पड़ेगी। यही वजह है कि हम एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं और एक ही विशेषज्ञ को रखते हैं कार्यक्रम में।
और राजेश जी, ये हरी संतोला बरी काला पहाड़ मणिपुर से हमारे पास ईमेल आया है।
हमारे श्रोता मणिपुर में है, जानकर अच्छा लगा।
संदीप सोनी द्वारा प्रस्तुत दुनिया जहान इनको बहुत अच्छा लगा, और इनकी एक शिकायत है कि एक ही रिपोर्ट को दोबारा क्यों प्रस्तुत करते हैं।
वो इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग हैं आपकी तरह, आप शायद हमारे दोनों प्रसारण सुनते हैं इसलिए आप जानते हैं कि हमने उसको दोबारा प्रसारित किया है, लेकिन बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो हमारा एक ही प्रसारण सुनते हैं तो वो मिस न कर जाएं इसलिए हम उसको रिपीट करते हैं।
तो जाते जाते आखिरी पत्र लेते हैं, ये सादिक आजमी का सऊदी अरब से। लिखते हैं कि प्रसारण के दौरान उद्घोषक हंसे हों ऐसा कभी हुआ नहीं है। मानसी दास हंसी थी कल तो पूछ रहे थे कि क्या उसका कुछ कारण था।
किसी भी बात पर कई बार स्टूडियो में लोगों को हंसी आ जाती है। हम कोशिश करते हैं कि कार्यक्रम की गरिमा, उसकी गंभीरता बनाए रखें, लेकिन हम सब इंसान हैं और हमें हो सकता है कि उनको, मुझे नहीं मालूम कि उनको किस बात पर हंसी आई, लेकिन कई बार बहुत छोटी छोटी बातों पर दूसरी तरफ जो साथ काम कर रहे होते लोग उनकी किसी हरकत पर, किसी बात पर कभी भी हंसी आ सकती है, और आप इस बात को समझते हैं, ये भी हमें अच्छा लगा।
तो अब पता बता दें, अगर आप हमें चिट्ठी लिखना चाहते हैं तो उसका पता है आपकी राय, बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003।
और अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार। प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र में आज विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद शुरू हुई। कल शंकराचार्य के नेतृत्व में परम धर्म संसद हुई थी, जिसमें 21 फरवरी से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का ऐलान हुआ था। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र, जानते हैं उनसे कि आज कुंभ में क्या हुआ।
जी मानसी, आज जैसा आपने बताया कि विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद शुरू हुई और इसमें आज तो सबरीमाला को लेकर के एक प्रस्ताव पारित हुआ है, लेकिन लोगों की निगाहें जो हैं वो थी कि अयोध्या राम मंदिर के मामले में क्या करने जा रही है। कल हुई थी परम धर्म संसद, जिसमें शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती और तमाम दूसरे संत, दुनिया भर से कई संत आए हुए थे, जिन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया कि आगामी 21 फरवरी से वो लोग शिलान्यास करेंगे अयोध्या में राम मंदिर का और उसके लिए 10 फरवरी से कूच करेंगे अयोध्या की ओर। तो उनका ये प्रस्ताव पारित हुआ है। अब लोगों की निगाह इस पर है। बहुत संभव है कि कल, चूंकि अब इनके ऊपर एक दबाव भी है विश्व हिंदू परिषद के ऊपर, आज की बैठक में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी शामिल हुए, तमाम दूसरे संत शामिल हुए और इसको माना यह जा रहा था कि निश्चित तौर पर इस पर कोई ना कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। जैसा कि अभी केंद्र सरकार ने किया है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दिया है कि 67 एकड़ जो ज़मीन है, अधिग्रहित ज़मीन, बिना विवादित वाली, उसको वापस लिया जाए, तो उसको लेकर के ये फैसला उनकी ये धर्म संसद और महत्वपूर्ण रखती है।
जी, जानकारी देने के लिए शुक्रिया समीर आत्मज मिश्र। और अब चलते चलते सुनते हैं खेल की खबरें।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। नियमित कप्तान विराट कोहली की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा की अगुवाई में खेलने उतरी भारतीय टीम को आज न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे वनडे में करारी हार झेलनी पड़ी। न्यूजीलैंड ने ट्रेंट बोल्ट की बेहतरीन गेंदबाजी के दम पर हैमिल्टन के सीडन पार्क मैदान पर भारत को 8 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में अपनी जीत का खाता भी खोल लिया है। हालांकि भारत ने पहले ही सीरीज में अजेय बढ़त बनाई हुई है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए महज 93 की चुनौती पेश की, जिसे मेजबान टीम ने 2 विकेट गंवाकर आसानी से 14.4 ओवर में हासिल कर लिया। सलामी बल्लेबाज मार्टिन गप्टिल 14 और कप्तान केन विलियमसन 11 रन बनाकर जल्द पवेलियन लौटे। इनके बाद हेनरी निकोल्स 30 और रॉस टेलर 37 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के लिए दोनों विकेट भुवनेश्वर कुमार ने झटके। मैच में 21 रन देकर 5 विकेट लेने वाले कीवी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट मैन ऑफ द मैच चुने गए। आज के खेल पर बात करते हुए खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली,
किसको उम्मीद थी कि भारत इतने कम स्कोर पे इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप गिर जाएगी, और किसको उम्मीद थी कि ट्रेंट बोल्ट अपना वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेल्स आज ही डालेंगे? पर यही क्रिकेट है, आप किसी भी चीज को आप यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड, और यहाँ पे आज हमने देख लिया कि चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, आपको हमेशा कंसिस्टेंटली ही परफॉर्म करते रहना पड़ेगा।
और वहीं भारत टेनिस की 119 साल पुरानी प्रतियोगिता डेविस कप में 1 और 2 फरवरी को इटली का सामना करेगा। क्वालिफाइंग दौर के पहले राउंड में कोलकाता के कलकत्ता साउथ क्लब में भारतीय टीम अपनी चुनौती पेश करेगी। दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं, इनमें भारतीय टीम सिर्फ 1 में ही जीत दर्ज कर पाई है। उसे पिछली जीत इसी मैदान पर 1985 में मिली थी। वहीं इटली ने 1928, 1952, 1958 और 1998 में जीत दर्ज की थी। भारत के लिए ब्रजनेश गुणेश्वरन, रामकुमार रामनाथन, साकेत मैनेनी, रोहन बोपन्ना और दिविज शरण चुनौती पेश करेंगे। वहीं इटली की ओर से मार्को सोचिनाटो, आंद्रे सेपी, माटेओ बेरेटिनी, थॉमस फेबियानो और सिमोन बेलेली कोर्ट पर उतरेंगे। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और कार्यक्रम में आपसे विदा लें उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। हरियाणा की जींद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। बीजेपी प्रत्याशी कृष्ण मिड्ढा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला को शिकस्त दी है। इटली की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर में प्रवेश कर चुकी है। देश की जीडीपी पिछले साल के अंतिम 3 महीनों में 2% नीचे गिर गई है। वेनेजुएला में कैद किए गए पत्रकारों की रिहाई के लिए अब यूरोपीय संघ भी आगे आ गया है। स्पेन की समाचार एजेंसी ईफी के 3 पत्रकारों को वेनेजुएला में गिरफ्तार कर लिया गया था। सूडान की राजधानी खार्तूम में राष्ट्रपति उमर अल बशीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब भी लगातार जारी हैं। बीबीसी ने अपनी एक जांच में पाया है कि यमन में अमेरिका की अलकायदा के ठिकानों पर की गई छापेमारी के दौरान कई अज्ञात आम नागरिकों को भी मौत हुई थी। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत कल सवेरे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।